भगवान अर्जुन को युद्ध भूमि में संबोधित कर रहे हैं। अर्जुन जो है युद्ध नहीं करना चाहता है। हम लोगों ने विषाद युग में देखा, अर्जुन रथ पर बैठ गया है, रो रहा है और भगवान उसको कहते हैं युद्ध करो, युद्ध नहीं करना चाहता है। बहुत से तर्क दिए कि मैं अब जो है ध्यान करूंगा, मैं हिमालय जाऊंगा ध्यान करूंगा, मैं ब्राह्मण बन जाऊंगा और भिक्षा लूंगा। तो कह रही ये सब हम लोग देख चुके हैं। भगवान कहते नहीं नहीं ये सब कुछ नहीं, उनको काम करना है, अपना कर्तव्य कर्म करना है। तो उसको अर्जुन को भगवान समझा रहे हैं, एक एक करके स्टेप देके समझा रहे हैं कि क्यों तुमको करना है। प्रकृति तुमको अवश्य करेगी काम करने के लिए, क्योंकि प्रकृति के गुण के हिसाब हम काम करते हैं, जिसके जैसे गुण हैं वैसे हमको काम करना पड़ता है। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि तुम एक क्षण भी जो है बिना काम के नहीं रह सकते, कर्म करना ही होगा। तो आप लोग एक्सेप्ट करते हो आप एक क्षण के बिना भी नहीं रह सकते, हर क्षण आपको काम करना पड़ता है, कैसे प्रूव करोगे? हाँ नहीं, उसको सिस्टमेटिक आपको जाना होगा ना। बच्चों को सिखाना होगा तो कैसे सिखाना होगा? हमने आंख बंद कर लिया बैठ के, नहीं काम करते हैं। फिर आप बच्चों को बोलोगे कान बंद हुए तुम्हारे, आंख तो बंद हो गई, कान बंद हुए सुनाई पड़ता है, आंख बंद करने के बाद भी सुनाई पड़ता है, सुनाई पड़ता है। फिर उसमें से कोई चालाक आदमी होगा, कोई चालाक बच्चा होगा, बोला हम सो जाते हैं तब कान बंद रहते हैं, कान में सुनाई नहीं पड़ता है, मन भी नहीं रहता है, थॉट भी नहीं है, तब फिर आप कहोगे कि सांस चलती है, ये है वो, समझाओ क्या? देखो मन का दरवाजा नहीं, जैसे कान का दरवाजा नहीं है ना, मन का भी दरवाजा नहीं है, उसको आप नहीं बंद कर सकते, आपके हाथ में नहीं है। तो खैर बोले आप एक क्षण भी बिना कर्म के नहीं रह सकते। अच्छा ठीक है भाई, नहीं रह सकते हैं तो क्या करें? बोला अपना कर्तव्य करो, आपका जो कर्तव्य कर्म है वो करो। आपका कर्तव्य कर्म क्या है? बोले आपकी वासना के अनुसार है, आपकी जैसी वासना है उसके हिसाब से आपका कर्तव्य कर्म बनता है। वासना के अंदर आपके सात्विक राजसिक तामसिक आपके मूड्स हैं। अगर आप सात्विक हो राजसिक हो तामसिक हो तो उसके हिसाब से आप ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हो, ये भगवान बहुत आगे बता चुके हैं। और ब्राह्मण को क्या करना चाहिए, क्षत्रिय को क्या करना चाहिए, वैश्य को क्या करना चाहिए, शूद्र को क्या करना चाहिए, भगवान 18वें अध्याय में बताएंगे। उनके क्या धर्म है, आप 18वां अध्याय सुनने के लिए चिन्मय मिशन में आओ, हम बताएंगे। आश्रम के अनुसार भी हम लोग के धर्म बने हुए हैं, किस आश्रम में क्या करना है, सब धर्म बने हुए हैं। बोले कर्तव्य कर्म करो। अच्छा, कर्तव्य कर्म करो तो कैसे करें? तो भगवान ने बता दिया फॉर्मूला कि आपको हर कर्तव्य कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है, भगवान के लिए करना है, नहीं गलत हो गया। फिर तो आप गलत काम करोगे और जाके फिर बोलोगे संडे में जाके कॉन्फेशन कर दोगे, ऐसा नहीं है। भगवान की प्रसन्नता के लिए आपको कर्म करना है। अगर ये ऐसा अगर आपने नियम बना लिया तो आपसे गलत काम तो पहले होगा ही नहीं, एक नंबर काम तो ये खत्म हो गया। और फिर धीरे धीरे आपको फिर ये भी समझ में आने लगेगा कि भगवान हमारे काम में कर्म में भी खुश नहीं होते हैं। तो अगर आपके जीवन से ये दो चीजें निकल गई तो आपका काम जो है जीवन शुद्ध हो जाएगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा। हम लोगों ने 6 किस्म के कर्म देखे थे, अशोक जी बता देंगे फटाफट कौन कौन से हैं अशोक जी।
नियत कर्म, निमित्त का कर्म, निमित्त प्रायश्चित कर्म, उपासना कर्म।
बस बहुत बढ़िया, देखो है ना, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, प्रायश्चित, उपासना, ये 4 हमको करने, ये हमारे कर्तव्य हैं। आपके वर्ण और आश्रम के हिसाब से, वर्ण मतलब जैसा आपका माइंड का कलर है, माइंड का कलर है मतलब जैसा आपका माइंड सत्व रजस तमस जो कॉम्बिनेशन है उसके हिसाब से आप ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हो, नॉट बाय बर्थ। गीता में भगवान जो है आपके बर्थ के अनुसार नहीं मानते हैं। ब्राह्मण कुल में शूद्र हो सकता है, शूद्र कुल में ब्राह्मण हो सकता है। तो उसके हिसाब अपना कर्म करो। अब प्रश्न आता है भगवान क्यों करें, साइंस बताओ क्यों करें हम? पहले तो आपने बता दिया कर्म करो, बिना कर्म के रह नहीं सकते आप, हर क्षण करना है। कौन सा कर्म करें? भगवान कहते कर्तव्य कर्म करो। कैसे करो? मेरी प्रसन्नता के लिए करो, मेरे लिए करो। अभी आप कर्म कैसे करते हो? भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हो, भगवान के लिए करते हो,
अपने लिए?
किसके लिए करते हो? किसकी प्रसन्नता के लिए? यहां पर गड़बड़ी है। अगर अपनी प्रसन्नता के लिए करते हो तो रास्ता दूसरी तरफ जाता है, और भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हो तो रास्ता दूसरी तरफ जाता है। भगवान की प्रसन्नता वाला रास्ता आपको जो है ज्ञान के लिए अधिकारी बना देगा, और ये वाला रास्ता ये आपको घोर मूर्ख अज्ञानी बनाएगा। मैं फिर भी चॉइस हमारी है, जो मर्जी हम करें। भगवान ने रिटर्न प्रॉमिस किया हुआ है ना, कहां बोला है रिटर्न प्रॉमिस? कर्मण्य वाधिकारस्ते, ये सब तो हम लोग पढ़ चुके हैं। आप जो भी कर्म करो, जो भी बात बोलो, जो भी सोचो, कभी भगवान आके इंटरफियर नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे, क्योंकि अधिकार उन्होंने दे दिया हमको। बोलते अगर अपने कर्तव्य कर्म जैसे मैं कहता हूं मेरी खुशी के लिए करोगे तो उससे तुम्हारा मन शुद्ध होगा। कर्तव्य कर्म अगर जैसे भगवान कहते हैं अगर उस तरीके से हम करेंगे तो मन शुद्ध होगा, मन शुद्ध होगा तो आप जो है ज्ञान के अधिकारी बनोगे। हमने कई बार आप लोगों को कहा है कि मुक्ति के लिए केवल दो स्टेप है, नंबर वन नंबर टू. क्या है नंबर वन? प्योरिफिकेशन ऑफ माइंड, एंड सेकंड नॉलेज. तो ये सिंपल है, दो सीढ़ियां चढ़नी है और तो कुछ है नहीं कहां, दो सीढ़ियां केवल है. मन शुद्ध कैसे होगा? अपने कर्तव्य कर्म भगवान की खुशी के लिए अगर आप करोगे तो वो जो है पावनानी, हम लोग 18वें अध्याय में पिछले क्लास में ही पढ़ रहे थे, अगर आप ऐसे करोगे तो आपका मन शुद्ध हो जाएगा, और मन शुद्ध होगा तो आप ज्ञान के अधिकारी होगे. ज्ञान होने में कितना समय लगेगा? एक सेकंड. ज्ञान क्या है? तत्त्वमसि, तुम वो हो. वो कौन है? ब्रह्म. तो हम क्या हैं? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं. बस यही ज्ञान है. हो गया ज्ञान, बैठ गया अहम ब्रह्मास्मि. बोले अगर हम नहीं करते हैं, जैसा हम करते आए हैं वैसा ही करेंगे, तो बोलते हैं आपका जब जीवन जो है वो विफल हो गया, जीवन ही आपका नष्ट हो गया आपका. और हम लोगों ने ईशा वासु उपनिषद में पढ़ा कि आपने अपनी आत्महत्या कर ली. आत्महत्या मतलब इसी जीवन के अंदर वो फल आपको मिल सकता था, आपके सामने है, ले सकते हो, हाथ बढ़ाओ ले लो. आप बोलते नहीं हमको नहीं चाहिए, हम तो अनात्मा में ही खुश हैं, हमको आत्मा नहीं चाहिए. क्यों भाई आप अनात्मा में क्यों खुश हो? क्योंकि अनात्मा में काम करने से बड़ी जल्दी फल मिल जाता है ना. एक घंटा काम करो, $15 बिल, पैसे दो. मगर एक घंटा जप करो, भगवान को बोलो फल दो. नहीं करो तो हमको भगवान पर विश्वास नहीं होता है, तो इस वास्ते हम अनात्मा में काम करते रह जाते हैं. सारा जीवन लगा रहा है, ऐसे ही चला जाता है. फिर भी जो है अर्जुन उठा नहीं, इतना कहने के बाद भी उठा नहीं. भगवान कहते अच्छा तुमको मैं एक और बताते हैं, तुम और सुनो थोड़ा सा. सृष्टि एक चल रही है, सृष्टि चक्र एक है, एक साइकिल है सृष्टि के अंदर. और वो साइकिल जो कर्म के ऊपर आधारित है, सारी सृष्टि कर्म के ऊपर में आधारित है. और भगवान कहते हैं मैं तुमको सृष्टि चक्र बताने जा रहा हूं, तुम उसको ध्यान से सुनो. और तुम भी वैसे ही कर्म करो. तो भगवान ने आगे कहा तदर्थम कर्म कौनते है, तदर्थम उसके लिए कर्म करो, तद अर्थम अपने लिए नहीं, मम अर्थम नहीं, तद अर्थम कर्म कौनते है. अर्जुन तुम उसके लिए कर्म करो. कैसे? मुक्त संग समाचर, मुक्त संग कर्म के साथ में अटैच भी नहीं हो, और फल के लिए भी क्रेव नहीं करो, फल आएगा. ये दो चीजें सोच के आप कर्म करते जाओ. देखो एक घर को चलाने के लिए कितना काम करना पड़ता है ये आप सबको मालूम है. एक घर चलाने के लिए उसको साफ सुथरा रखना, खाना बनाना, बच्चों को पालन करना, ये वो दुनिया भर के जो है अपने संबंधी मित्रों इन सबको खुश रखना कितना बड़ा काम है. अब आप सोच लो इतना बड़ा जगत कैसे चलता है, इतनी बड़ी सृष्टि जो भगवान चलाते हैं कैसे चलाते हैं? कोई ना कोई तो कर्म कर रहा है ना, बहुत कर्म करना पड़ता है तब ये सृष्टि चलती है. तो भगवान कहते हैं देखो जगत को ठीक ठीक चलाने के लिए इतने लोग काम करते हैं. तो बोले मैं तुमको एक चक्र दिखाता हूं. क्या है? आपने पढ़ लिया?
अन्नात् भवन्ति भूतानि,
अन्नात् भवन्ति भूतानि,
पर्जन्यादन्न संभवः,
पर्जन्यागन्य संभव
यज्ञात् भवति पर्जन्यः
यज्ञात् भवति पर्जन्यः
यज्ञः कर्म समुद्भवः
यज्ञः कर्म समुद्भवः
कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि
कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि
ब्रह्माक्षरसमुद्भवम्
ब्रह्माक्षरसमुद्भवम्
तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म
तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म
नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्
नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्
एवं प्रवर्तितं चक्रम्
एवं प्रवर्तितं चक्रम्
नानुवर्तयति हयः
नानुवर्तयति हयः
अघायुरिन्द्रिया रामः
अघायुरिन्द्रिया रामः
मोघं पार्थ स जीवति
मोघं पार्थ स जीवति
भगवान कहते हैं एवं प्रवर्तितम चक्रम तो 14 और 15वें श्लोक के अंदर एक चक्र की बात कर रहे हैं बोलते हैं एवं प्रवर्तितम चक्रम ये चक्र ऐसा चल रहा है नानुवर्तीय यह है जो इसका वर्तन नहीं करता जो इसको एक्सेप्ट नहीं करता जो इसका पालन नहीं करता है अघायु इंद्रिय राम अघायु बेकार उसका जीवन है इंद्रिय राम मतलब इंद्रियों में रेबल करता है सेंस ऑब्जेक्ट में रेबल करता है आत्माराम नहीं है जो आत्मा में रेबल करता है वो आत्माराम जो इंद्रियों में रेबल करता है सेंस ऑब्जेक्ट में रेबल करता है वो इंद्रिय राम मोघम पार्थ सजीवति मोघम व्यर्थ उसका जीवन क्या है व्यर्थ है तो जो चक्र के हिसाब से काम नहीं कर रहा है भगवान का चक्र चल रहा है भगवान जिस हिसाब से काम कर रहे हैं उस हिसाब से जो काम नहीं करता है तो बोलता है मोघम जीवति बेकार है उसका जीवन क्या है चक्र अन्नाद भवंती भूतानी अन्नाद भवंती अन्न कहाँ से आता है पृथ्वी से आता है और पृथ्वी से जो अन्न उत्पन्न होता है उसको जब हम खाते हैं तो उससे भूतों का जन्म होता है भूतों का मतलब प्राणियों का जन्म होता है हर प्राणी कुछ ना कुछ अन्न खाता है और उसका अन्न खाने से जो है जीवन हमारा बढ़ता भी है पैदा होने के टाइम भी सोर्स जो क्या है अन्न है ये हम लोग ने आगे डिस्कस किया है पर्जन्यात् अन्न संभव अन्न कैसे होता है बोले बारिश होती है जब बारिश होती है उसके बाद में जो है बीज अंकुरित होता है बारिश में ना हो तो बीज भी अंकुरित नहीं होगा अन्न नहीं होगा तो अन्न का मूल कारण क्या है बारिश है रेन्स है यज्ञात् भवति पर्जन्य बोले बारिश कैसे होती है बारिश बोलते हैं पर यज्ञ से होती है एक पर्जन्य सूत्र है वो पर्जन्य सूत्र के अंदर आप हवन करते हो स्वाहा 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 करते हो तो वो पर्जन्य सूत्र के हिसाब से बारिश होती है तो आप कहोगे कि भाई हम तो मानेंगे नहीं हमारे अमेरिका में तो कोई यज्ञ करता नहीं है बारिश तो होती है तो क्या आपके वहां पर इंडिया में ही लोग करते हैं तभी होती है और नहीं होती बोले नहीं हम नहीं मानते आप वहां करते हो हिमालय में बैठ के कोई साधु पर्जन्य सूत्र कर रहा है और सारी दुनिया में बारिश होती है हम तो मानने वाले नहीं है इसमें कोई सत्यता नहीं है महात्मा लोग कहते हैं इसमें सत्यता है इसमें सत्यता है कैसे है भाई देखो ऑर्गेनाइजेशन में या किसी फैमिली के अंदर में कुछ आदमी बहुत काम करते हैं कुछ नहीं करते हैं आगे की ज्वाइंट फैमिली के अंदर एक आदमी कमाता था 20 आदमी खाते थे ऐसा था अभी भी बहुत सी ऐसी फैमिली है जिसके अंदर जो है एक आदमी ज्यादा कमाता है बाकी सारे खाते हैं एक कमाता है 20 खाते हैं तो अगर भारत में एक मुनि ऋषि अगर पर्जन्य सूक्त कर रहा है तो सारी दुनिया में बारिश हो सकती है क्यों नहीं मानते हो अगर होता है आपके समाज में तो ये भी हो सकता है, या आपके पास में ऐसी कंपनी है बाप दादा की बनाई हुई है। एक बार प्रेमल जी हम लोग को ले गए थे कहाँ, राउंड लेक, क्या राउंड लेक नहीं है क्या, लेक जूरी, लेक जिनेवा में ले गए। तो वहां पर बोट राइड करा रहे हैं, तो हर मकान की हिस्ट्री बताते हैं, लो ये मकान कब बना था, कौन मालिक है, उसके बाद कौन मालिक हुआ, कितनी जमीन है। तो रिगली रिगली का बहुत नाम है, मतलब देखो एक रिगली है, कोई रहे होंगे, तो उसने कभी कब बनाया था, और वो मकान अभी 100 साल 200 साल उस जनरेशन के जन। अब देखो इन्वेंशन रिगली का एक व्यक्ति का था, उसके नीचे जो जितने भी अधिक उनके जो पुत्र हैं या ग्रैंड सन्स हैं या ग्रेट ग्रैंड सन्स हैं, वही रिगली चल रही है ना, अभी भी रिगली है। किया किसने था, एक ने किया था ना, लाभ कौन ले रहा है, सारी फैमिली अभी भी ले रही है। ऐसे बहुत से इंस्टेंस होंगे, किसी एक ने शुरू किया, उसके बाद में वो कंपनी जो है बच्चे उसके ग्रैंडसन उसके ग्रैंडसन वो चलता जा रहा है। तो पूर्वज किसी ने बनाई थी वो कंपनी, लाभ किसी और को हो रहा है, एक के कारण बहुतों को लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो भारत में अगर किसी एक संत ने पर्जन्य सुक्त किया तो उसका लाभ दुनिया को हो सकता है। ठीक है, अभी भी बारिश के लिए वहां पर पर्जन्य सुक्त करते हैं, जब दरकार होती है तो पर्जन्य सुक्त का हवन होता है वहां पर भी। यज्ञ कर्म समुद्वम, बोले कर्म से यज्ञ होता है। यज्ञ कैसे करेंगे, कर्म करना होगा, तो कर्म करने के लिए दो आदमी होते हैं वहां, एक तो पुरोहित होगा और दूसरा यजमान होगा, दो तो होंगे ही, मगर अगर बड़ा हवन होता है तो फिर उसके अंदर और कई लोग लगते हैं। तो ये कर्म है, दो आदमी जब मिलके जब करते हैं तो उसको हम लोग यज्ञ कर्म बोलते हैं, एक यजमान होगा और एक पंडित होगा पुरोहित होगा। बहुत अच्छा, तो करने से क्या मिलेगा, बोले अपूर्व रूप फल मिलता है यज्ञ करने से, अपूर्व जो पूर्व में नहीं था। यज्ञ करने के पहले बारिश नहीं थी, यज्ञ करने के बाद में बारिश मिली, तो वो फल अपूर्व रूप, पहले वो नहीं था, पूर्व में पहले नहीं था, वो फल मिलता है। तो यज्ञ से अपूर्व रूप फल मिलता है, बारिश मिलती है। तो यहां पर हम लोगों ने देखा कि श्रृंखला कैसी है, कर्म, कर्म से यज्ञ, यज्ञ से बारिश, बारिश से अन्न, अन्न से जीव, हुआ ना, ये सीक्वेंस है, सब कोई कर रहे हैं। अब प्रश्न आता है कर्म कहां से आया, कर्म कहां से आया। तो अब श्लोक नंबर 15 के अंदर आप देखिए तो बताते हैं, कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, कर्म जो है ब्रह्म से उत्पन्न होता है, तो कर्म का कारण ब्रह्म है। ब्रह्म कहां से आया, तो कहते हैं ब्रह्म अक्षरम समुद्भवम, ब्रह्म अक्षर से आया। अरे कर्म ब्रह्म से आया और ब्रह्म अक्षर से आया, हम तो जानते थे ब्रह्म कॉजलेस कॉज है, यहां तो ब्रह्म का बाप भी बता दिया, ब्रह्म का बाप अक्षर है, ये क्या हुआ, ये तो गड़बड़ बात है। अच्छा देखो यहां पर बताया तो ऐसा ही है, मगर शंकराचार्य जी कहते हैं कर्म ब्रह्मोद्भवम, ब्रह्म मीन्स वेद, ब्रह्म का मतलब होता है वेद, कर्म जब आप करते हो तो कैसे करना है वो कहां मिलता है, वेद में लिखा हुआ है कर्मकांड, आपको आगे भी हमने बताया कि जितना भी वेद है उसके अंदर मेजॉरिटी पोर्शन जो है कर्मकांड है, क्या करना है कैसे करना है, क्या मंत्र पढ़ने हैं, क्या क्या चाहिए, सब कुछ उसमें लिखा हुआ है। तो कर्म कैसे करना है बोलता हूं, वेद में लिखा हुआ है। अच्छा इसीलिए हम लोग को तो कहा गया था ना, वेदो नित्य अधीयताम तदुदितम कर्म सुनिष्ठियताम, वेदो नित्य अधीयताम, क्यों वेद को रोज पढ़ें? ताकि आपको मालूम पड़े कि आपको अपने काम में कर्म कैसे फुलफिल करने चाहिए। आगे के जमाने में आपको स्वर्ग जाना है तो चलो क्या करो, यज्ञ करो। आपको पुत्र चाहिए, पुत्रेष्टि यज्ञ कर लो। तो यज्ञ में क्या होता था? यज्ञ में हम ऑब्लेशंस देते हैं, आहुति देते हैं। तो आहुति देते हैं, कैसे देते हैं? एक मंत्र पढ़ते हैं। मंत्र किसके उद्देश्य में होता है? जिस देवी देवता को हमको पूजा करनी होती है। फिर हम कहते हैं कि ये आहुति आपके लिए है, ये मेरे लिए नहीं है। ये आहुति किसके लिए है? आपके लिए है। कहां डालते हैं? अग्नि में डालते हैं। अग्नि कहां ले जाती है? स्पीड पोस्ट। देवी देवता को जो है तुरंत मिल जाता है वहां पर। अच्छा, तो ब्रह्म का यहां मतलब हुआ वेद। अब ब्रह्म वेद कहां से आया? बोले वेद अक्षर से आया। अक्षर का मतलब होता है ब्रह्म। जिसका अक्षर नहीं है, जिसका विनाश नहीं है, उसको हम अक्षर कहते हैं। ऐसी कोई चीज आपको नजर आती है इस दुनिया में जो अक्षर है? सब क्षर है, यहां सब पेरिशेबल है, केवल एक वस्तु अक्षर है, वो ब्रह्म है। तो वो ब्रह्म क्या है? अविनाशी है, अविकारी है, चैतन्य स्वरूप है। उस चैतन्य स्वरूप ब्रह्म से वेद आया। बहुत अच्छा। तो पहले अक्षर हुआ जिसको हम ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म से एक पुरुष आता है। पुरुष आता है मतलब ब्रह्म से ब्रह्मा आते हैं। देखो ब्रह्म और ब्रह्मा में फर्क है। ब्रह्मा चतुर्मुख हैं, इतना तो मालूम होगा ना। ब्रह्मा के कितने मुख हैं? चार मुख हैं। ब्रह्म से ब्रह्मा आए, ब्रह्मा से वेद आया, चतुर्मुख से चार वेद हुए। ब्रह्म, ब्रह्मा, वेद, कर्म, यज्ञ हुआ। यज्ञ के बाद में बारिश हुई, अन्न हुआ, जीव हुए। हो गया, ये क्रम है। ठीक है, आप जब कहते हो तो ठीक है। तो ब्रह्म से वेद कैसे आया? तो इसके लिए कहा गया है पुरुष निश्वासवत सम्मुद्भवम्। पुरुष में से निश्वास, जैसे श्वास जो एफर्टलेस है ना, सांस लेने के लिए आपको कोई एफर्ट करना पड़ता है नहीं। अगर तकलीफ हो दूसरी बात है, तब बोलते हैं सांस नहीं आ रहा है। अदरवाइज निश्वास जो है, ब्रीदिंग है, वो एफर्टलेस है। उसी तरह से वेद जो है एफर्टलेसली ब्रह्मा जी के निश्वास से सब निकले, एफर्टलेसली निकले। अच्छा, तो परमात्मा ने वेद लिखा नहीं, परमात्मा ने केवल रिवील कर दिया, मैनिफेस्ट कर दिया। जब सृष्टि होती है तो वेद आते हैं, जब सृष्टि खत्म होती है तो वेद व्यक्त अव्यक्त। अच्छी तरह अगर समझना हो तो जैसे आपके अंदर स्वप्न आता है और जाता है, वैसे ही वेद आते हैं और जाते हैं। इज दैट सिंपल। इस तरह से, इसीलिए उसको ऐसे कहा जैसे निश्वास, सांस लेते हैं जाते हैं, ऐसा होता है ना, वैसे ही ब्रह्मा जी से वेद उसमें से आए सब। तस्मात सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम तस्मात देयरफोर। अब दो श्लोक का जो है कंक्लूजन निकाल रहे हैं, क्या है? सर्वगतम ब्रह्म, सर्वगतम ब्रह्म यज्ञ प्रतिष्ठितम। जो ब्रह्मा जो है सर्वव्यापी ब्रह्मा है, वो यज्ञ में प्रतिष्ठित है। जो सर्वव्यापी है वो निश्चित रहेगा। जो सर्वव्यापी चीज है वो तो यज्ञ में ही प्रतिष्ठित है। यज्ञ के बाहर भी है, यज्ञ के भीतर भी है। ब्रह्म का दूसरा मतलब क्या बताया था हमने? वेद। वेद भी सर्वव्यापी है, जो उसको ब्रह्म को सर्वव्यापी कहते हो भाई, तो उसको सर्वगत माने सर्वार्थ प्रकाशकत्वात्। वेद जो है ना सब चीजों को प्रकाशित करता है, वेद के अंदर सब कुछ है, सब शास्त्र हैं उसमें। उसमें आयुर्वेद भी आपको मिलेगा, धनुर्वेद भी मिलेगा, उसमें आर्किटेक्चर भी मिलेगा, उसमें अर्थशास्त्र भी मिलेगा, कर्मकांड कैसे करना है वो भी मिलेगा, सब कुछ आपको मिलेगा। वेद के अंदर चोर शास्त्र भी है, कैसे चोरी करनी है, कुछ समय जाना है, वो भी है उसमें। चोर शास्त्र भी है, पाक शास्त्र भी है, क्या पकाना है कैसे पकाना है, तो वो सब भी है उसके अंदर में। तो वो जो है प्रकाशित करता है, तो वेद जो है वो भी प्रकाशित करता है सब चीजों को। इसलिए वेद भी सर्वगत है, सब जगह है, क्योंकि वेद के अंदर सब कुछ आपको मिल जाएगा, सब साइंस जो है वेद के अंदर में है। बहुत अच्छा। तो कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि देखो यज्ञ चल रहा है, तो ब्रह्म सर्वव्यापक है और वेद भी सर्वव्यापक है, तो वो सब जगह प्रतिष्ठित। तो ये तो हुआ हमारा ट्रेडिशनल मीनिंग, जिसमें हम हवन करते हैं, ट्रेडिशनल मीनिंग। तो यज्ञ की श्रृंखला के अंदर अगर आप देखोगे तो यज्ञ कर्म जो है ना वो बीच में आता है, बीच में आता है। अच्छा, अब उसका हम सेकंड इंटरप्रिटेशन देखेंगे। इसी का सेकंड इंटरप्रिटेशन क्या है? तो अन्नाद भवंती भूतानी, सब भूत अन्न के कारण जीवित रहते हैं। जब हमको अन्न मिलता है, पेट भर जाता है, तो क्या होता है? आनंद होता है। तो अन्न का मतलब आनंद, अन्न का मतलब आनंद हुआ। तो ये आनंद कैसे संभव है? पर्जन्याद अन्न संभव। जब बारिश होती है तब आनंद होता है। देखो जब पहली बार बारिश होती है ना, तो हम लोग जब जाके नहाते हैं, फिर खूब आनंद होता है उस टाइम में। और किसान उस टाइम में नाचता है, आनंद में नाचता है कि बारिश आ गई, आनंद है। बहुत अच्छा। यज्ञात भवती पर्जन्य, यहां पर यज्ञ क्या मतलब क्या है? बोले यहां त्याग है। वहां अन्न का मतलब था आनंद, यहां पर यज्ञ का मतलब हम त्याग लगाते हैं। तो त्याग से क्या है? देखो पानी कैसे होता है, कौन कौन लोग सैक्रिफाइस करते हैं, तो बरसात में सबसे पहले सैक्रिफाइस करता है समुद्र। समुद्र अपना पानी देता है। सूर्य क्या करता है? अपना ताप का यज्ञ करता है। उसकी सैक्रिफाइस क्या है? ताप है, अग्नि देता है। उसके बाद बाष्प बनकर ऊपर चले जाते हैं। फिर क्लाउड्स, क्लाउड्स क्या करते हैं? वो भी त्याग करते हैं, पानी देते हैं। फिर पानी देके फिर क्या होता है? पृथ्वी पर आ जाता है। पृथ्वी क्या त्याग करती है? अन्न देती है। सब कोई जो है वो अन्न को पाके हम आनंदित होते हैं। सीक्वेंस समझ में आ रहा है? इस तरह से वो चलता है। तो सूर्य तप रहा है, वायु बह रही है, नदी का पानी बह रहा है, और सूर्य वायु जल ना रहे तो हमारा जीवन नहीं है। वो है तब हमारा जीवन है। रामायण में तुलसीदास जी कहते हैं, संत बिटप सरिता गिरिधरनी, परहित हेतु सबन कई करनी। ये पांच चीजें दूसरों के लिए काम करती हैं। कौन कौन है? संत। संत दूसरों के लिए काम करता है। क्या काम करता है संत? स्वामी चिन्मयानंद जी तो बोलते थे, ये सब दे आर ऑल द पैरासाइट ऑन द सोसाइटी, ईटिंग एंड डूइंग नथिंग। यहां संत तुलसीदास जी कहते हैं, संत दूसरों के लिए काम करते हैं। क्या काम करते हैं? सबको मार्ग दिखाते हैं, भाई इस रास्ते पर चलो, कहां फंसे हुए हो? संत बिटप, बिटप में वृक्ष, पेड़। पेड़ क्या करते हैं? फल देते हैं हमको, सीजन सीजन में फल देते हैं, मगर एक भी फल अपने लिए नहीं रखते। कभी देखा है किसी आम के वृक्ष को आम खाते हुए? नहीं, दूसरे के लिए। सरिता, सरिता मतलब नदी, पानी, सरिता पानी, बराबर दूसरों के लिए। गिरि पर्वत, दूसरों के लिए। धरणी धरती, दूसरों के लिए। परहित हेतु सबने कहीं करनी, परहित के लिए, दूसरों के लिए वो सब कर्म कर रहे हैं। क्यों कह रहे हैं, एक मनुष्य ऐसा बदमाश है अपने लिए करता है, लोग बाकी सब दूसरों के लिए करते हैं, एक मनुष्य है जो ये गड़बड़ करता है सब कुछ। फिर एक जगह और तुलसीदास जी कहते हैं, संत सहई दुख परहित लागी, पर दुख हेतु असंत अभागी, भूर्ज तरु सब संत कृपाला, परहित नीति सह विपत्ति विशाला। संत सही दुख परहित लागी, संत लोग जो है ना वो दूसरों के लिए दुख सहन करते हैं, दूसरों का भला हो परहित, हमारा हमको दुख लेना पड़े तो ले लेंगे ठीक है, मगर दूसरों का भला होता रहे। पर दुख हेतु असंत अभागी, मगर जो दूसरों जो अज्ञानी लोग हैं वो दूसरों को जो दुख देते हैं बोलते हैं वो अभागी है, अनफॉर्चुनेट है, बहुत गलत काम करते हैं जो दूसरों को दुख देते हैं। अच्छा वो क्यों दुख देते हैं दूसरों को, वो इसलिए दुख देते हैं कि हमारी कामना पूरी हो। जब भी हमारे में सेल्फिश डिजायर होती है ना तब हम उसको पूर्ण कर लेने के लिए कभी ना कभी कोई शॉर्टकट मारते हैं, तो शॉर्टकट के अंदर में कभी कभी दूसरों को भी नुकसान हो जाता है। ऐसा आप लोग देखेंगे जब वहां इंडिया में आपको अगर भीड़ में बस में चढ़ना हो तब देखो कैसा होता है, धक्का मुक्का होता है, दूसरों को भी आप जो है हटा के अपने घुसना चाहते हो। भूर्ज तरु सब संत कृपाला, भूर्ज तरु एक भोज वृक्ष होता है, भोज वृक्ष आपको मिलेगा वहां पर अपना बद्री नारायण के ऊपर में तपोवन है, तपोवन के और आगे जाने से एक भोज वन है, वहां भोज वृक्ष है। तो भोज वृक्ष की खासियत क्या है, भोज वृक्ष की ये खासियत है कि उसमें से परतें निकलती हैं और परतें जो है कागज की तरह पतली हैं और उसके ऊपर आप लिख सकते हो, इसीलिए आगे होता था ना भोज पत्र भेजा, इन्विटेशन को भोज पत्र कहते थे, वो पत्ते के ऊपर लिख के भेजते थे भोज पत्र, उसमें लाइनें भी होती हैं आप लिख सकते हैं भोज पत्र। तरु सम संत कृपाला, बोले संत कैसे, बोले भाई भोज वृक्ष की तरह है वो, तो दूसरों के लिए है, कृपालु है। परहित नित सह विपत्ति विशाला, दूसरों के हित के लिए विपत्ति विशाला, बहुत विपत्ति ले लेते हैं। आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि बहुत से संत कई बार जो है दूसरों की बीमारी भी ले लेते हैं, दूसरों की बीमारी ले लेते हैं, दे दो मेरे को दे दो वो स्वस्थ हो गया। तो क्यों करते हैं भाई, दूसरों के लिए करते हैं, दूसरे खुश रहें, दूसरे आनंदित रहें। तो साधु का चरित्र कैसा है, फिर संत तुलसीदास जी जय कहते हैं, साधु चरित्र शुभ चरित्र कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु। उसका चरित्र कैसा है, साधु का चरित्र बोला कपास की तरह सफेद है एकदम, कपास कैसा है बोला नीरस है, कपास के अंदर रस नहीं होता, गीला नहीं होता है, सूखा होता है और गुणमय है। गुण है मतलब कपास को अब आप पहले जब निकालते हो पेड़ से निकालते हो तो पहले क्या करते हो, कितना देखो उसको कष्ट कहना पड़ता है कपास को, उसको पहले बीज से निकालोगे फिर उसको एक धुनिया होता है वो धुन धुन पीटता है उसको, फिर उसमें गुण रस्सी निकलती है, गुण रस्सी को भी कहते हैं, फिर धागे को सूता बनाते हैं, कैसे बनाते हैं उसको ट्विस्ट करते रहते हैं कंटिन्यूअसली, उसको घुमाते रहते हैं जैसे, फिर वो सूता बन जाता है। आप कपड़े की फैक्ट्री में जाओगे तब नजर आएगा कैसे कैसे होता है वो, फिर उसको डालते हैं उसको ऐसे ऐसे वो करते हैं, फिर वीव करते हैं इधर से उधर, वो खटर 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 चलता रहता है, फिर कपड़ा बन गया, फिर दर्जी के पास में जाता है, दर्जी फिर उसको काटता है, देखो कपास को कितना दुख सहना पड़ता है, पहले तो दुनिया ने उसको पीटा, यू नो दैट गार्डनिंग ऑफ द कॉटन, फिर उसके बाद में उसको ट्विस्ट किया, उसको मरोड़ते ही जाते हैं, मरोड़ते ही जाते हैं एक तरफ, फिर उसको इधर से उधर दौड़ाया उसको, फिर कपड़ा बन गया, फिर टेलर के पास गया वो उसको काटता है, अच्छा काट दिया चलो भाई, मगर टेलर एक अच्छा है काटता है तो जोड़ता भी है, दुनिया में लोग काट देते हैं जोड़ते नहीं है, टेलर जोड़ता भी है उसको, जोड़ के फिर क्या काम करता है, तो भगवान यहां पर लिखते हैं लिखते हैं कि फिर वो हमारे देह के छिद्र को ढकता है, हमारी नग्नता को ढकता है। दूसरों के हित के लिए कपास ने देखो कितना काम किया, कितनी परेशानी दी। हम लेते हैं क्या उसने? नहीं लेते। आप लोग बच्चों को सुनाते होगे स्टोरी ऑफ द गिविंग ट्री, मालूम है आप लोग बता, बच्चों को बताते हो ना। सो देखो ये बड़ों को भी सीखना चाहिए। एक छोटा सा बच्चा गया, खेल रहा था, आम के पेड़ के पास पूछा, बैठ गया, चुपचाप बैठ गया। बोले क्या हुआ बेटा, क्या हुआ आज चुपचाप बैठे हो, खेल नहीं रहे हो? बोले खेलने के खिलौने के पैसे नहीं हैं। तो बोले ले जाओ मेरे आम, ले जाओ उसको बेचो, खिलौने खरीद लो। वो लड़का ले गया सब आम, बाजार में बेचा, पैसे मिले, खिलौने लिया। फिर कुछ दिन बाद फिर वापस आया, फिर चुपचाप बैठ गया। बोले क्यों उदास क्यों हो भाई, आज उदास क्यों बैठे हो? बोले मेरे लिए घर नहीं है। तो बोले मेरी ब्रांचेस काट लो, उसकी लकड़ी से तुम घर बना लो। लड़के ने सब ब्रांचेस वंचे काट ली, बना लिया, घर बन गया। फिर 10-20 साल के बाद में आता है, मुझे नदी पार जाना है, मेरे पास नौका नहीं है। तो बोले क्यों परेशान हो रहे हो, ट्रंक काटो मेरा, नौका बना लो, उस पार चले जाओ। उसके बाद में फिर वो आता है फिर एक दिन कि मेरे को शांति नहीं है, बुढ़ा हो गया, वही सेम लड़का बुढ़ा हो गया, शांति नहीं है। तो बोला मेरा तना इतना से जो बाकी है उसको पीठ लगा के बैठ जाओ। देखो तो इस तरह से सारी प्रकृति हमको हेल्प करती है, मगर कोई शोर नहीं मचाता है, पेड़ शोर नहीं मचाता कि हमने ये किया ये किया वो किया। और हम लोग शोर मचाते हैं, हमने पंखा दिया मेरा नाम लिखो, पंखे में नाम लिख दिया। कोई एक पत्थर देता है, बोला मेरा पत्थर पर नाम लिखो, वहां मंदिर के सामने लगा दो। आप मंदिरों में जब जाओगे ना, बहुत पत्थर मिलेंगे नाम लिखा हुआ, नाम लिखो मेरा। देखो लोग चाहते हैं ऐसा, और उसमें भी कुछ बड़े नीचे स्तर के भी लोग होते हैं। एक जगह जो है प्रवचन चल रहा था, फिर दान देने की बात आई, तो बहुत लोग जो है खड़े हो गए कि हम भी दान देंगे, हम भी दान देंगे। तो प्रवचनकर्ता बहुत खुश हुए, तो उन्होंने कहा भाई लास्ट दिन आपका नाम अनाउंस करेंगे सबका। बोला हाँ, मगर एक कंडीशन है, हमको मंच पर बुलाना होगा और माला पहनानी होगी। प्रवचन करता बोले ये और करना, ये तो सस्ता काम है, एक माला आप देंगे और आप लाख रुपए दोगे? तो बोला हाँ हम लाख देंगे, एक लाख देंगे। आपको समाज के सामने कहना होगा कि ये सेठ जो है 1,00,000 रुपया दान देंगे और हमें मंच पर बुलाएंगे और हमें माला पहनाएंगे। तो संत बोले इसमें क्या बड़ी बात, अच्छी बात है, कर दिया। पैसा ही नहीं, पैसा उस संत ने दिया ही, उस सेठ ने दिया ही नहीं। वह फिर पूछते हैं भाई क्यों नहीं दिया तुमने, क्यों देते नहीं हमको, दो पैसा तुम्हारा तुम नाम अनाउंस कर दिया। तो दूसरे बोलते वही तो उसका काम था, उसने समाज के सामने अपना जो है मान बना लिया कि इसने इतना दान दिया है, और दान कब चेक आ नहीं रहा, वापस नहीं आ रहा, पैसा ही नहीं आ रहा है। तो लोग समाज के अंदर ऐसे भी हैं। देखो जितना भी वर्ल्ड के अंदर ये काम हो रहा ना, ये सब इतना बड़ा जो चक्र चल रहा है सृष्टि का, कोई हल्ला नहीं करता है कि मैं ये काम कर रहा हूं, सब चुपचाप करते हैं। जब सूर्योदय होता है कोई हल्ला नहीं करता है कि सूर्योदय हो रहा है, और हम सब थोड़ा सा करते हैं तो कितना हल्ला करते हैं। तो कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, ब्रह्म के कारण कर्म हो रहा है। अच्छा यहां पर ब्रह्म का मतलब क्या है, यहां पर दो ब्रह्म आए ना, श्लोक नंबर 15 में दो बार ब्रह्म आया, कर्म ब्रह्म से आया। पिछली बार हमने देखा उसको वेद बनाया था, कर्म मतलब ब्रह्म मतलब वेद, यहां पर ब्रह्म का मतलब होता है सगुण ब्रह्म, और अक्षर का मतलब होता है निर्गुण ब्रह्म। ये सेकंड इंटरप्रिटेशन चल रहा है। तो सेकंड इंटरप्रिटेशन के हिसाब से ब्रह्म माने ईश्वर सगुण ब्रह्म, और अक्षर माने निर्गुण। तो सगुण ब्रह्म किसके ऊपर निर्भर है? निर्गुण ब्रह्म। निर्गुण ब्रह्म क्या हुआ? ब्रह्मन। सगुण ब्रह्म क्या हुआ? ब्रह्मा, ईश्वर, विष्णु, महेश्वर, ये सब हो गए सगुण। क्योंकि निर्गुण ब्रह्म कुछ नहीं करता। क्यों नहीं करता है? और करता है। क्यों नहीं करता है? नो बॉडी। उसके पास में ग्रॉस बॉडी नहीं है, सटल बॉडी नहीं है, कॉजल बॉडी। शुद्ध ब्रह्म, शुद्ध ब्रह्म कुछ नहीं कर सकता। शुद्ध इलेक्ट्रिसिटी, उसमें अगर इक्विपमेंट नहीं लगाओ कुछ नहीं कर सकता है। तो निर्गुण ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म के बाद में सगुण ब्रह्म आया। सगुण ब्रह्म से हमको जो है वेद मिले, कर्म हुआ, कर्म से हमने यज्ञ किया, उसके बाद में हमको रेन, रेन के बाद में अन्न, अन्न से जीव, देखो ये शुरू हुआ। वेरी गुड। तस्मात सर्वगतम ब्रह्म नित्य यज्ञ प्रतिष्ठितम। इस तरह से हमारा वो सृष्टि का चक्र चल रहा है। अब आप देखिए थर्ड इंटरप्रिटेशन, ये सब आपको पुस्तक के अंदर नहीं मिलेगा। थर्ड इंटरप्रिटेशन क्या है? अन्नात भवति भूतानी। अन्न का मतलब हुआ मैटीरियल प्रॉस्पेरिटी। कैसे लगाते हो भाई अन्न का मतलब मैटीरियल प्रॉस्पेरिटी? अन्न किसको कहते हैं? तो हमारे यहां परिभाषा है अद्यते अति अन्न, जिसको खाया जाए, जिसको ग्रहण किया जाए उसको अन्न कहते हैं। उसके हिसाब से आंख से हम रूप देखते हैं, तो आंख का अन्न क्या हुआ? रूप हुआ। कान से शब्द सुनते हैं, कान शब्द ग्रहण करता है, तो कान का अन्न क्या हुआ? शब्द। तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये सब के सब क्या है? अन्न है। और आगे के जमाने में ऐसा होता था कि जिसके पास में जितना अन्न है वो उतना धनी है कि नहीं? जिसके पास में जितना कैटल है उतना धनी। तो अन्न जो है इज इक्वल टू मटेरियल प्रॉस्पेरिटी। अच्छा, अब लोग जहां जहां अन्न है, जहां जहां मटेरियल प्रॉस्पेरिटी है, वहां लोग जाते हैं कि नहीं? मेटीरियल प्रॉस्पेरिटी अमेरिका में है, ऑस्ट्रेलिया में है, यूके में है, तो लोग कहाँ जाते हैं? जहाँ मेटीरियल प्रॉस्पेरिटी है वहाँ लोग जाते हैं। हम लोग भी सब आए हैं। क्यों? मेटीरियल प्रॉस्पेरिटी के लिए आए हैं। अच्छा, तो वहाँ पर आपके जो है कैरियर की अपॉर्चुनिटी है। हमने इंडिया में पढ़ा, अपॉर्चुनिटी वहाँ नहीं मिली। कैरियर कहाँ है? बोले अमेरिका में है। एक व्यक्ति बोला मेरे पास एक साइकिल है उसमें भी कैरियर है। बोले हम उस कैरियर की बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा ठीक है। पर्जन्यात अन्न संभवम। बोले पर्जन्य का मतलब क्या हुआ? बोले बहुत अच्छी काम करने की स्थिति, कंडीशंस। मेरे पास डिग्री है, सब कुछ है, मगर हमको फील्ड नहीं मिल रहा है। तो परिस्थिति हमको जहां पर अच्छी मिले तो वो पर्जन्यात हो गए। तो कैसे परिस्थिति सहयोगी होगी? तो यज्ञात भवति पर्जन्य। सहयोगी परिस्थिति हमको कैसे मिलेगी? अगर सब व्यक्ति यज्ञ रूप कर्म करें। सब व्यक्ति यज्ञ रूप कर्म करें मतलब क्या है? जहां पर आप सिंसियरली, ऑनेस्टली, जहां पर आप वैल्यूज पालन करते हो वो यज्ञ है। जहां पर सिंसियरिटी है, जहां पर जो आप ऑनेस्टी है, जहां पर वैल्यू का पालन होता है, वो जो है आपका यज्ञ है। देखो जापान एक छोटा सा देश है ना, और अमेरिका ने खत्म कर दिया था, कर दिया था ना, और उसके बाद कितने दिन के अंदर वो उठ के वापस आ गया, खड़ा हो गया। क्यों खड़ा हो गया? क्योंकि हर एम्प्लॉय के डेस्क पर एक सेंटेंस लिखा हुआ था, You give your best। ये उनका इंस्पिरेशन वाक्य था, You give your best, that's all। और कितना आगे आके जापान आ गया। अच्छा, सिंगापुर छोटा देश था, सिंगापुर तो अभी बड़ा है, बंबई के बराबर है। एक समय उनकी ऐसी इच्छा थी कलकत्ते जैसा बन जाए। ये उनका प्लान था। मगर अब तो बहुत आगे बढ़ गया है, कलकत्ते से भी बहुत आगे बढ़ गया है। देखो इंडिया के अंदर भी जो है लेबर फोर्स बहुत है, अगर जितने भी इंडियन वहां हैं वो अपना ऑनेस्टली सिंसियरिटी वैल्यू के साथ में अगर कर्म करें, काम करें, तो कोई देश उसको ओवरटेक नहीं कर सकता। जो सिंसियरिटी ऑनेस्टी डिसिप्लिन हम अमेरिका में दिखाते हैं, हम वहां जाके नहीं दिखाते कभी। ये फर्क है। तो अंडर डेवलप्ड कोई कंट्री नहीं है, हर कंट्री के पास में कुछ ऐसे रिसोर्सेस हैं, अगर वो उसको यूटिलाइज करे तो वो भी डेवलप हो सकता है, मगर लोग जानते नहीं है, करते नहीं है। अगर करें तो हो जाएगा। यज्ञ कर्म समुद्वम, इसलिए यज्ञ करना चाहिए। घुमा फिरा के आपको यहां पर ले आने का एकमात्र मतलब है कि सृष्टि सारी यज्ञ कर रही है। चूंकि हम लोग को कर्म की छूट दी गई है, हम उस छूट का जो है दुरुपयोग कर रहे हैं। उसका सदुपयोग क्या है कि इतनी बड़ी जो सृष्टि का कर्म का चक्र चल रहा है, अगर आप भी उसी तरह से कर्म करो, दूसरों के लिए कर्म करो, तो उसका यह मतलब नहीं हो कि आपका हित नहीं देखेंगे। अरे सारी दुनिया आपका हित देख रही है, सृष्टि देख रही है, आपको हवा पानी सब कुछ मिल रहा है। एक संत ने तो ऐसा कहा कि कमाना ऐसा चाहिए कि कल हम मर जाएंगे, ऐसा सोच के कमाओ। क्या कहा हमने? ऐसा कमाओ, ऐसा सोच के कमाओ कि कल मर जाएंगे। जीवन कल होगा कि नहीं मालूम नहीं है अभी, ऐसे कमाओ। और ज्ञान कैसे लो? ज्ञान ऐसे लो कि हमको भी बहुत जीवित रहना है। कहने का तात्पर्य क्या है कि ज्ञान के लिए समय ज्यादा दो, और अर्न के लिए, अर्निंग के लिए, कमाने के लिए उन्होंने कहा ऐसा मान लो कि पता नहीं कल, पता है रहेंगे कि नहीं रहेंगे, पता नहीं है। और हम लोग सबको पता है, मगर हम 7 पुस्तकों का पैसा इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, 7 जेनरेशंस। तो क्रम कर्म ब्रह्मोद्भव सब विधि, कैसे कर्म करते रहो? बोले सब में कर्म शक्ति है। कर्म शक्ति कहां से आई? बोले कर्म शक्ति ब्रह्म से आई। हमारे में जो कर्म करने की शक्ति किसने दी? वो ब्रह्म से आई है। हम लोग भागवत के अंदर भी वो पढ़ रहे थे कि उसके अंदर एक देव शक्ति है, एक क्रिया शक्ति है, और भोक्तृ शक्ति है, भोग की शक्ति है, 3 शक्ति। अभी पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, देव शक्ति, कर्म शक्ति और भोक्तृ शक्ति। वो कहां से मिली? भगवान से। हम जो कुछ भी कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? कॉन्शियसनेस है ना, उसी के कारण तो बोल रहे हैं। कॉन्शियसनेस नहीं होगा तो हम बोल नहीं पाएंगे, आप सुन नहीं पाओगे। तो भगवान कहते हैं कि आप जो है यज्ञ रूपी कर्म करो, उत्साह के साथ में कर्म करो। तो आपको हमने ये सृष्टि चक्र के 3 इंटरप्रिटेशन आपको बताए, और आगे देखेंगे।
पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरि ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ॐ। Thank you.